ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा भूमि समस्या समाधान आयोग किया गया खारिज। अख्तियार द्वारा 12 करोड़ रुपए से अधिक भ्रष्टाचार करने के अभियोग में राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक डॉ संगीता सिंह भंडारी सहित 13 लोगों के विरुद्ध विशेष अदालत में मुकदमा हुआ दर्ज। और इसराइल और हमास बीच हुआ शांति समझौता, सोमवार से बंधक रिहा होने की आशा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने भूमि समस्या समाधान आयोग खारिज किया है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में हुए मंत्रिपरिषद बैठक से भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश 2081 बमोजिम गठित भूमि समस्या समाधान आयोग और सभी जिला समितियों को खारिज करने के लिए निर्णय किया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने दी। संचार मंत्री खरेल ने कहा कि ईलाम जिला को 3 महीने के लिए विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करने लगातों के निर्णय हुआ है। मंत्रिपरिषद बैठक से अध्यागमन और विजिट वीजा के संबंध में समस्या समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय अध्ययन तथा जांच बुझ समिति द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन, कार्यालय कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय भेजने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समिति की प्रतिवेदन क्रियान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालय में भेजने का निर्णय सहित अन्य भी निर्णय किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के साथ प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भेंट किया है। आज मंत्रिपरिषद के बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्की राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पहुंचकर राष्ट्रपति पौड़ेल के साथ भेंट की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच देश के पिछले राजनीतिक घटनाक्रम, आगामी निर्वाचन लगायतों के समसामयिक विषय पर विचार विमर्श हुआ है। ये जानकारी भेंट में सहभागी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक डॉ संगीता सिंह भंडारी, तत्कालीन कामू रजिस्ट्रार झनकार लामी छाने सहित 13 लोगों के विरुद्ध विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अख्तियार के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौड़ेल के मुताबिक प्रतिष्ठान के तत्कालीन उपकुलपति भंडारी सहित प्रतिष्ठान के लिए एमआरआई मशीन कम गुणस्तर का खरीद कराकर आर्थिक अपचलन करने के अभियोग में पड़े शिकायत के संबंध में हुए अनुसंधान के बाद आरोपित विरुद्ध आज विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि अख्तियार ने भंडारी विरुद्ध 12 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक भ्रष्टाचार के अभियोग सहित मुकदमा दर्ज किया है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने कहा है कि न्याय प्राप्त के लिए नागरिकों का हक नहीं मरने देंगे। आज सर्वोच्च अदालत में नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों, सर्वोच्च बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सचिव, महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी बराल, नायब महान्यायाधिवक्ताओं, घाटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सचिवों के साथ विचार विमर्श करके प्रधान न्यायाधीश राउत ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सूचना प्रविधि का रिकवर होते ही सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूप में संचालन होगी। सरकार ने हुलाक सेवा को और समृद्ध बनाकर ले जाने की जानकारी दी है। विश्व हुलाक दिवस के अवसर पर हुलाक सेवा विभाग द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि नेपाल में हुलाक सेवा का सार्थकता अभी भी सांदर्भिक है, इसलिए हुलाक सेवा को समयानुकूल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मौके पर मंत्री खरेल ने कहा कि हुलाक सेवा को स्मार्ट हुलाक सेवा में रूपांतरण करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार भी किया जाएगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहा नै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि यदि सरकार चुनाव कराती है तो उसे राजनीतिक दलों का विश्वास जीतकर चुनाव प्रक्रिया में सभी को भागीदार बनाना चाहिए। एमाले की भक्तपुर जिला समिति द्वारा आज गुंडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि लोकतांत्रिक शक्तियों को एक साथ आकर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखते हुए देश को समृद्ध बनाना चाहिए और सरकार को सकारात्मक और अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। अध्यक्ष ओली ने प्रतिनिधि सभा की बहाली के पक्ष में अपनी पार्टी के रुख की पुष्टि की और विश्वास जताया कि नेपाली कांग्रेस भी इस पर सहमत होगी। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने देश की वर्तमान शांति एवं सुरक्षा स्थिति के बारे में चारों सुरक्षा निकायों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। आज की इस बैठक में आईजीपी चंद्र कुमार खापुंग, सशस्त्र पुलिस महानिरीक्षक राजू अर्याल, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के प्रमुख टेकेन्द्र कार्की और एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने भाग लिया। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इस बैठक में देश की समग्र शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री कुलमान घिसिंग ने पिछले सप्ताह आई बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग का आज निरीक्षण किया। उन्होंने अस्थायी सड़क संचालन के लिए जल्द से जल्द राजमार्ग को फिर से शुरू कराने के लिए निर्माणाधीन डायवर्जन के काम को तेज करने का सड़क विभाग के अधिकारियों को निर्देश किया। डिवीजनल सड़क कार्यालय भक्तपुर ने बताया है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग के काबरे प्लान चौक खंड में 5 स्थानों पर और सिंधुली के 3 खंडों में डायवर्जन का निर्माण किया जा रहा है। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के संगठन इप्पान ने बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं को विभिन्न राहत पैकेज देने की मांग की है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग ने मुलाकात के दौरान इप्पान के प्रतिनिधियों ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए सरकार को राहत पैकेज की घोषणा करने पर जोर दिया। परसा और बारा में हैजा विरुद्ध टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। हैजा की महामारी और हाल की बारिश के बाद आई बाढ़ ने इन क्षेत्रों में पैदा हुए उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य सेवा विभाग के प्रबंधन शाखा ने 10,18,100 खुराक टीके परसा और बारा भेजने की तैयारी की है। स्वास्थ्य सेवा विभाग ने बताया है कि यह टीका 1 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी लगाया जा सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमास और इसराइल के बीच जारी जंग के 2 साल पूरे हो गए हैं। अब 2 साल बाद इसराइल और हमास ने गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष तौर से वार्ता शुरू की। दरअसल मिस्र के लाल सागर स्थित रिसोर्ट शर्म अल शेख में हो रही यह वार्ता अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पहले चरण का विवरण तय करना है। पहले चरण के विवरण में युद्ध विराम शामिल है, जिसमें हमास की ओर बनाए गए सभी शेष बंधकों को छोड़ा जा सके। इसराइल और हमास के बीच युद्ध के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। 2 साल पहले हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने दक्षिणी इसराइल में धावा बोल दिया था। उन्होंने 1200 लोगों के हत्या कर दी थी, इसमें अधिकांश नागरिक थे। वहीं 251 लोगों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद इसराइल ने हमास को समाप्त करने की योजना बनाई। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारद्वारा भूमि समस्या समाधान आयोग किया गया खारिज, अख्तियार द्वारा 12 करोड़ रुपए से अधिक भ्रष्टाचार करने के अभियोग में राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक डॉ. संगीता सिंह भंडारी सहित 13 लोगों के विरुद्ध विशेष अदालत में मुकदमा हुआ दर्ज और इसराइल और हमास के बीच हुआ शांति समझौता सोमवार से बंधक रिहा होने की आशा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।